point between Srila Prabhupada and Hanuman Prasadada and Baiji. At the Gita Press, Akram has been, has also Kirtan and left his son recorded fragments of the conversation. The next recording is the same evening, 3rd January 1971, Srila Prabhupada speaks to a gathering of university students and members of the Gorakhpur community after Arati from Chaitanya Charitamrita.
बहुत ज्यादा है ये बेचारी समझ नहीं पाएंगे कोई बात नहीं सब है यार एक जगह इंग्लिश में
बोलो अंग्रेजी में बोलो जरा आपका जो हमारे जो
है
अंग्रेजी
में बोलो अंग्रेजी में
हिंदी
हम ज्यादा बोल नहीं सकता अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौम सात दिन करो तुम्हें वेदांत सेवा सार्वभौम भट्टाचार्य थे उस समय चैतन्य महाप्रभु का समय है बड़े भारी नहीं आए और शांकर संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे निराकारवादी और चैतन्य महाप्रभु से उनसे मुलाकात हुआ जगन्नाथपुर में ये सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी का जो महाराज उनका सभा पंडित थे बड़े बड़े सन्यासी को सिखाते थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मुलाकात हुआ किस तरह से कि चैतन्य महाप्रभु जब पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए और भगवान को श्रीमूर्ति देख करके उसी समय मूर्छित हो गया अनकॉन्शियस सार्वभौम भट्टाचार्य उस मंदिर में उपस्थित थे तो वो तो पंडित थे सब चीज जानते थे देखा कि इस प्रकार भाव तो साधारण मनुष्य नहीं है तो वो देखा इसका क्या परिस्थिति है, तो आंख में थोड़ा रुई लगा दिया, देखा रुई थोड़ा थोड़ा हिल गया और सब स्टॉप हो गया फंक्शन। तो उस समय दोनों का चाकर उधर उपस्थित थे, उनको बोला कि ये साधु को सन्यासी को हमारा घर में ले चल, और ले गया। और फिर उनका पीछे चैतन्य महापुर में का साथ में जो आने वाले थे उनको पार्षद सब, वो भी मंदिर में पहुंचा, देखा कि चैतन्य महापुर है नहीं, परंतु जितने सब दर्शक थे वो आपस में बातचीत कर रहा कि ऐसे बंगाल से नौजवान सन्यासी है, देखने को बड़ा सुंदर है, और ये जगन्नाथ मंदिर में आते ही और दर्शन करके बिल्कुल मुश्किल हो गया, तो बोल वाला चल रहा था, तो लोग समझ गया जैसे चैतन्य महापुर आए थे और फिर किधर कोई ले गए होंगे, ऐसा मूर्ति को तो होता ही था, जानते ही थे। तो फिर सबको ये सारो भट्टाचार्य का एक शाला, वो भी बड़ा भारी पंडित, उनके परिचय था गदाधर पंडित से, तो सब ले गया सारो भट्टाचार्य जी के बाद मकान में। और उधर जाकर के ये जितने चैतन्य महापुरुष के सब परिसर थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम की कीर्तन करने लगे। तो फिर आस्था चैतन्य महापुरुष की संगा आ गई, और फिर स्नान स्नान करके जगन्नाथ जी का प्रसाद पा करके भट्टाचार्य जी का जो पिता और चैतन्य महापुरुष के दादा नाना वो क्लास चौपाट, फिर से तो गांव का भी संपर्क हो गया, तो सारो भर का कुछ स्नेह भी हुआ, क्योंकि पुत्र स्थानीय हुआ, इसलिए वो कहा कि बेटा तुमने इतना जल्दी सन्यास ले लिया, तुम्हारा 24 बरस मात्र उम्र है, और तुम सन्यास किस तरह से रक्षा करोगे, सब समय वेदांत पढ़ो और उसी में मग्न रहो, तभी तुम सन्यास रक्षा कर सकोगे। तो बोला महाराज ठीक है, आप तो हमारा पिता का सदृश है, मैं तो बालक है आपके पास, और आप जैसे जैसे कहेंगे हम उसी प्रकार काम करूंगा, तो आप तो सन्यासी का भी गुरु है, ऐसे कुछ सम्मान उनको दिया। फिर वो वेदांत को शुरू किया, चारों भोगों भट्टाचार्य वेदांत तो पढ़ने को शुरू किया, चैतन्य महापुरुष सुनने को लगा, और सात रोज तक केवल सुना। तो सातों सौ भोगों भट्टाचार्य को कुछ संदेह हुआ कि ये लड़का सुन रहा है, कुछ पूछता नहीं, केवल सुनता है, तो क्या सुन रहा था उसको पूछा गया। कैसे इसलिए 7 दिन पर्यंत ऐसे कर भलमंद नहीं कहे भोसी मात्र सुन। और चेतन महाभोग भट्टाचार्य को जो विचार प्रस्तुत कर रहा था उसमें अच्छा है कि बुरा है कुछ नहीं बोलता था, केवल सुन रहा अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौम, आठवां दिन में सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे पूछा, क्या पूछा, 7 दिन करो तुम्हें वेदांत श्रवण, भालमंद नहीं कहो रहो मौन धरी, बुझो कि ना बुझो यह विदित ना। कहना मैं तुमको वेदांत विषय 7 दिन प्रवचन दे रहा हूँ और तुम केवल चुप से सुन रहा है, और क्या ठीक हुआ थी नहीं ठीक हुआ कुछ प्रश्न ऐसे तो होनी चाहिए कि क्या मतलब है तुम्हारा, एक चुपचाप सुनते भालमंद नहीं कहो बुझा कि ना बुझा या बुझा, तो इसलिए हमको समझ में नहीं आता तो तुम वेदांत को श्रवण करके कुछ उपलब्ध कर रहा थी नहीं, मैं केवल सुन रहा है, क्या बात उतना आश्चर्य होगी। प्रभु कहे मूर्ख आमी नहीं होता, अब प्रभु चैतन्य वहां कह रहे महाराज मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख और हमारा कुछ वेदांत का उद्धार ही है। देखिए चैतन्य महाप्रभु कहने का आगे जाके समझाएंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने को मूर्ख ऐसे है बतला, तो मूर्ख तो नहीं थे, आगे जाके प्रमाण होगा। तो क्यों मूर्ख होता है, तुम तो कहने का मतलब है कि आजकल का दुनिया में सभी मूर्ख है, वो वेदांत तो क्या ये कहना, इसलिए वो सब मूर्ख का प्रधान प्रतिनिधि होगा कि मैं तो मूर्ख है और वेदांत हमारा अध्ययन भी है। कुमार आज्ञा से मात्र कोई श्रवण, आप क्यों, क्योंकि आपने कही कि तुम बहुत कम उम्र में सन्यास किया है, इसलिए तुम्हारा ये सन्यास धर्म रक्षा करने के लिए तुमको चाहिए वेदांत शब्द, तो इसलिए मैं श्रवण कर रहा हूँ। असल में मैं मूर्ख है और वेदांत का कुछ अध्ययन ही नहीं है और ना हम वेदांत को समझने का कोई योग्य पुरुष है। सन्यासी धर्म लागू श्रवण मात्र कर, आपने कही कि ये सन्यास का धर्म है तो सब समय वेदांत को पढ़े, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। और सन्यासी धर्म लागू श्रवण मात्र कर सुनी गई अस्त्र करो बुझी करना पड़े, अब प्रयास कर लिया। केवल आपने कही कि सन्यास का उचित है वेदांत श्रवण करना चाहिए, इसलिए मैं बैठ बैठ के सुन रहा हूँ। और आप जैसे इसको प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हम कुछ अर्थ नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। देखिए कौन मूर्ख हुआ, क्या भट्टाचार्य जो कहे ना बुझी है न ज्ञान जात, बुझीवार लागी से हो पूछे पुनर्वार। भट्टाचार्य कहते हैं मान लिया तुम वेदांत को समझ नहीं रहे हो, मैं जैसा बोल रहा हूँ तो कम से कम तो पूछना भी तो था, महाराज हम कुछ नहीं समझ रहे हैं थोड़ा और अच्छी तरह से समझाइए, तो तुम चुपचाप क्यों बैठे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तो कुछ बतलाना भी तो था। सुनी 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 रहो मऊ न मात्र भरी की आशे कुमार बुझी तना। भट्टाचार्य तो बड़े विद्वान थे, वो समझ गया जो ये जो लड़का है जैसे कह रहे हैं इसका और कुछ मतलब, वो समझ गया। तो इसलिए कहते हैं जो तुम सुन सुन के चुपचाप रहते हो इससे मालूम होता है कि तुम्हारे भीतर में कुछ मतलब है। प्रभु कहे सूत्रे रास्ते बुझे निम्न, आप चैतन्य महापुरुष कहते हैं महाराज ये जो सूत्र आप बताते हैं ये तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेते और आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमको कुछ समझ नहीं सकते, सूत्र तो हम बहुत अच्छे से समझ लें बाकी समझ में क्या मुश्किल है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, आप ब्रह्म को ये जो मनुष्य जीवन है अब ब्रह्म वस्तु क्या चीज है उसको जिज्ञासु होनी चाहिए, ये तो सबको ही समझ पाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब इसका उत्तर जो है वेदांत में कहते हैं जन्मादृष्टता, जो ब्रह्म वस्तु जो है वही वस्तु है जहां से सब चीज का जन्म होता है, ये तो सबको ही समझ गए तो चैतन्य महाकर नहीं समझे हैं। इसलिए कहते हैं कि सूत्र का जो अर्थ है वो तो बड़ा सरल है, अब मैं समझ लेता हूँ और आप जो उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं वो हमको बिल्कुल नहीं समझ आता। फिर कहते हैं रूप है सूत्र अर्थ बुद्धि निर्मल, निर्मल का अर्थ वेरी क्लियर, निश्चय जी मुनि आप सूत्र वेरी क्लियर उदाहरण दीदा तुम्हार व्याख्या सुनी मोना है तो बी कॉ और आपको जो अफवाह बताते हैं वो सुनकर सुन करके हमारा जो हृदय है वो विकल हो जाता है। हाँ बिल्कुल परेशान हो जाता है समझे ना। अब ये चैलेंज हुआ प्रभु कहे सूत्र सूत्र अर्थ भाष्य कह प्रकाश किया चैतन महाप्रभु कहते हैं अगर कोई सूत्र का भाष्य लिखना चाहिए टीका टिप्पणी लिखना चाहिए बोलना चाहिए कमेंट किसको आओ निर्मल कर देना और प्रकाश कर देना और आप जैसे व्याख्या कर रहे हैं वो कैसा है तुम ही भाष्य कहो सूत्र अर्थ आख्या दिया और तुमने आपने जो सूत्र का व्याख्या कर रहे हैं वो तो आप उसको और ढक देता है वो सूत्र का तो प्रकाश नहीं होता। जैसा सूर्य का रश्मि जो है वो तो सर्व प्रकाशमान है उसको और किसी को प्रकाश करने की जरूरत ही नहीं है परंतु अगर कोई बादल ला करके सूर्य के सामने रख दिया जाओ अच्छी तरह से समझो आपका ऐसी बात आपका अर्थ जो है वो और उसको ढक देता है। इस सूत्र का तो अर्थ बहुत प्रकार है उसमें कोई मुश्किल नहीं है समझ में कोई मुश्किल नहीं है परंतु आपका जो व्याख्यान है उसको ढाक देता है। जैसा आजकल का भगवत गीता का व्याख्यान करते हैं कहते हैं जन्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेदादि ये कुरुक्षेत्र जो है कोई कहते हैं ये सही है आप लोग जानते हैं ऐसे व्याख्यान होता है। अब देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है आप लोग सब लोग जानते हैं उस दिन अमृतसर से हम लोग आ रहे थे तो कुरुक्षेत्र स्टेशन में गाड़ी खड़ा रहा और हमने इनको समझाया देखो जी ये कुरुक्षेत्र स्टेशन आज तक मौजूद है इधर ही कुरुक्षेत्र है और कोई कोई कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ है ये सही। तो धर्म क्षेत्र आज का भी कुरुक्षेत्र में सब धर्म जागरण करने के लिए तीर्थ करने के लिए कुरुक्षेत्र अभी तक जाते हैं और वेद वेद में ऐसे लिखा है कुरुक्षेत्रीय धर्म जागे तो वेद बहुत पुराने जमाने से चालू है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो भगवद गीता में व्यास देव जी कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो उसमें समझ में क्या मुश्किल होता है। बाकी कोई कोई आदमी कहते कुरुक्षेत्र अर्थ ये हुआ ये कोई और कुछ है और कुछ है आजकल गीता का व्याख्यान ऐसी चल रही है आप लोग सब जानते हैं तो इसीलिए गीता पढ़ते पढ़ते सब बुद्धा हो जाते हैं बल्कि कुछ समझते नहीं वही समझते हैं कि दुनिया में संसार में किस तरह से आबद्ध होकर रहेगा। तो आपका असल में लेता नहीं इसमें कोई उपकार नहीं होता। डॉक्टर राधा कृष्णा गीता का ऊपर लिखा है कमेंट और वो कहते हैं जब सूत्र श्लोक है मन मना भव मद भक्त मद जारी मांग नमस्कुरु ये अर्थ जो है बहुत सरल है। भगवान कहते हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो और मन मना भव मद हमारा भक्त बनो हमको नमस्कार करो इस तरह से तुम भक्ति योग साधन करो अब मैं तुमको निश्चित करता हूँ फिर इस जीवन का बाद तुम हमारे पास चल जाओ फिर कोई अर्थ उसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाकी डॉक्टर राधा कृष्णन तो बोलता है कि ये जो भगवान कह रहे हैं कृष्णा जो मन मना भक्त ये कृष्ण को नहीं तो कृष्ण का भीतर जो चीज है अब देखिए उनको मालूम नहीं है कि कृष्ण का भीतर बाहर कुछ नहीं कहीं कृष्ण जाए सुनो एब्सोल्यूट का भीतर बाहर कैसा ना ना साथ में कहते हैं अभिन्न क्या नाम नाम एब्सोल्यूट का अर्थ ही होता ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द बदंतु का तत्व सत्यम जब ज्ञानम अद्वय भगवान का विषय जो ज्ञान है वो अद्वय ज्ञान है केवल है उसमें है कोई बाहरी चीज है नहीं भगवान, भगवान का नाम, भगवान का शरीर, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का परिकार, वैशिष्ट सभी भगवान एक्चुअली होता है। और डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं जो उसका भीतर आउटपुट है भूलता है। इसी प्रकार कदर प्रकार से शास्त्र विचार करके हमारा ये जो भारतीय कृष्ण पतन हो गया, क्या सा धर्म ज्ञान विहीन हो गया, सलाह अर्थ नहीं लेने इधर उधर का बात करते विषाद कर लोग विषाद करते वेद का। हाँ वेद का अर्थ विषाद करने के लिए सो दिया गया था बड़े बड़े ऋषि लोग कोई मूर्ख आए जो विषाद करे नहीं, वेद का अर्थ तो जिस तरह से है उस तरह से ग्रहण करना चाहिए। ये सब चैतन्य आदि सब बताएंगे तो वेदांत अर्थ की आती है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सूत्र अर्थ भाष्य का ही प्रकाश। यदि आज कोई सूत्र का भाष्य आपको लिखना है तो साव प्रकाश ही जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामग्री का सभा ये तो सरल अर्थ है। कुरुक्षेत्र एक स्थान है वो धर्म क्षेत्र भी है और महाभारत का हिस्ट्री में जो दो भाई चचेरा भाई पांडव गुरु वो लोग लड़ाई भी की थी और कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्र जान करके उधर ही जाएंगे। इसमें आपको समझने में मुश्किल क्या है, इसलिए क्यों मैं लड़ाता हूँ जिसके कुरुक्षेत्र का शरीर और पंच पांडव का अर्थ होता है पंच इंद्रिय और इधर उधर उधर क्यों क्या जरूरत किसने छोड़ दिया था कोई व्यक्ति को अर्थ लगाने के लिए जो हमारे आगे और एक बड़े विद्वान आएंगे और वो उसका कमेंट है कृष्णा इतना मूर्ख था कि सबको सीधा सीधा बात नहीं कह करके एक आगे रख के लाएंगे वो कमेंट लिखा करके उसे समझा ये कोई बात है। तो अगर कमेंट आप लिखते हैं तो और उसको प्रकाश दीजिए उसका नाम है उसको और ढांक देने से क्या होगा। जहाँ भी देखा एक आदमी पूछा मास्टर जी का पास हुआ मास्टर जी ये व्याघ्र का क्या अर्थ होता है वो बोला दिया साबदूल वो बेचारे और परेशान हो गया व्याघ्र का अर्थ क्या है ना साबदूल कह देता सादा सीधे गड़ाघर का अर्थ होता बाघ सब कुछ समझ लेता है नहीं वो कहे फारदू। इस प्रकार का कमेंट लिखना है तो बेकार किया। ये चैतन्य महाप्रभु कहने का चैतन्य महाप्रभु का कहने का मतलब है जब वेदांत के सूत्र हो तो मैं बहुत सरल है समझ लेता फिर आप ऐसा कमेंट करते हैं जो बिल्कुल इसको ढाक लेता है ये आपका कमेंट करते सूत्र अर्थ भाष्य का ही प्रकाश किया तुम भाष्य कहो सूत्र अर्थ अच्छा जी मीन कवर मतलब यू आर स्पीकिंग यू आर सिंपली कवर सूत्र मुख्य अर्थ नाफर हो व्याख्या मुख्य और गौण दो अर्थ होते जब अर्थ समझ में नहीं आता तो गौण अर्थ होता जैसा शास्त्र में कहते हैं कि गंगा का ऊपर घोषपल्ली तो ये कोई पूछ सकता है कि गंगा तो जल है उसमें एक पल्ली कैसा तो उसका अर्थ आप लगा सकते हैं कि नहीं बिल्कुल जल में नहीं है गंगा का किनारे में घोषपल्ली क्या तो क्रिया से और जब बिल्कुल मालूम होता है इसका अर्थ उसमें कोई संदेह नहीं रहता है उसको कमेंट करने का कोई जरूरत ही नहीं गौणार्थ करने का कोई जरूरत ही नहीं इंटरप्रिटेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सूत्र मुख्य अर्थ नाकर जो आप जो है सूत्र का जो मुख्य अर्थ है असल जो मतलब है उसको तो आप व्याख्यान ही नहीं करते मुख्य अर्थ नकारो व्याख्यान कल्पना से तुम ही कहा करो आच्छादन और अपने एक कल्पना करके उसको आच्छादन कर रहे उपनिषद शब्द से मुख्य अर्थ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उपनिषद जो है जो जैसे जैसे बताते हैं उसे कोई उसका मुंह खर्च है, उसको कल्पना करने का कोई जरूरत नहीं है। उपनिषद शब्द से ही मुख्य अर्थ है, यही अर्थ मुख्य व्यासूत्रित होगा, उसी को आलम्बन करके व्यास के वेदांत सूत्र का लिखे हैं। उसमें है कोई और अर्थवाद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। मुख्यार्थ तो छाड़िया करो गौणार्थ कल्पना, अभिधा भित्ति छाड़ी करो सर्वे सर्वे लक्षण। कहते हैं आपका जो व्याख्यान करने की पद्धति जो है ये तो मुख्यार्थ का छोड़ दे, छोड़ दे करके एक कल्पना करके अर्थ कहते हैं, जिसको व्याकरण शास्त्र में कहते हैं कि अभिधा वृत्ति छाड़ी करो शब्द लक्षण। अभिधा वृत्ति छोड़ करके अभिधा वृत्ति लक्षणा वृत्ति देखिये वेदोभ्यास निकटता सुख से उद्देश्य कर छाड़ी है जो गौणार्थ कल्पना कहा जाए, शब्द अभिधा वृत्ति छाड़िया जो लक्षणा करा जाए ता अमंगल जनक प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य शब्द चारि प्रकार प्रमाण मध्य श्रुति प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण ही सकल प्रधान। अमृत प्रभाव भाष्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं चार प्रकार के प्रमाण प्रत्यक्ष अभिधा और ऐति प्रत्यक्ष ऐतिह्य और शब्द प्रमाण, ये तीन प्रमाण का भीतर में शब्द प्रमाण जो है वेद का जो वचन है इसका नाम है शब्द प्रमाण, वही सबसे ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी ठीक नहीं है, प्रत्यक्ष हम लोग बहुत भी वस्तु देख रहे हैं, बाकी उसको वास्तविक जो स्वरूप है उसको हम लोग जैसे सूर्य, सूर्य हम लोग रोजाना देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं जैसा छोटी सी खाली जाए देख रहे हैं, बाकी वास्तविक सूर्य का स्वरूप वो नहीं है। सूर्य का जो स्वरूप है शास्त्र अनुसार आपका ज्योग्राफी का अनुसार जो लोग बड़े बड़े विद्वान है सूर्य सिद्धांत अस्ट्रोनॉमी के विषय में वो कहते हैं कि सूर्य है 14 लाख गुना बड़ा है, बाकी हम देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष बड़ा, हम जो अपना सेंस अपना इंद्रिय को लगातार से जो ज्ञान लाभ करते हैं वो ज्ञान संपूर्ण है नहीं, इसलिए शब्द प्रमाण हमारा शास्त्र में मूल प्रमाण मानते हैं, जो वही ठीक प्रमाण है। शब्द प्रमाण जैसे वेद का वचन है वो शब्द प्रमाण उसको मानना चाहिए, और उसमें अनुमान और प्रत्यक्ष ऐतिह्य ये सब प्रमाण उसमें ठीक नहीं है। मुख्यार्थ छाड़िए करो गौणार्थ कल्पना, अविधा वृत्ति छाड़ी करो शब्द लक्षण, प्रमाण मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, जितने प्रमाण है वो श्रुति प्रमाण जो है वो सबसे प्रधान है। श्रुति जो मुख्यार्थ कहे सही से प्रमाण, श्रुति मुख्यार्थ जो मूल अर्थ है जो पढ़ करके उसी बात आप समझ जाएंगे वही अर्थ ठीक है, उसमें अपना मनवासी कोई अर्थ लगा करके दूसरे को भ्रम में डालना उचित नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का कहना था। जीवेर अस्थि विष्ठा दुई संख्या शंख गुमन, श्रुति वाक्य सही दुई महापवित्र है, जीवेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गुमन, एक उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं जो जीव का जो समझ लीजिए और कोई चीज का समझ लीजिए जानवर का भी समझ लीजिए, उनकी जो विष्ठा होती है और उनको जो हड्डी होती है वो अपवित्र माना जाता है। हमारा वैदिक नियम से विष्ठा जैसा हम लोग सवेरे निपटने जाते हैं उसी वक्त स्नान करने का उचित है, तो विष्ठा स्पर्श हो गया यदि अपनी विष्ठा है, तथापि विष्ठा स्पर्श होने का कारण शरीर अपवित्र हो गया ये हम लोग सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमको स्नान करके पवित्र होना, इसी प्रकार रास्ता में जाते जाते अगर कोई हड्डी छू लिया तो उसको हमको स्नान करना चाहिए, शास्त्र विधि है। चैतन्य हम ये प्रमाण दे रहे हैं कि जीभेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गोम, शंख ये जो हाँ हम लोग बजाते हैं भगवान का मंदिर में, ये तो अस्थि एक हड्डी है और गोबर जो है ये तो विष्ठा है कोई जानवर का। सूची बात के सही दुई महापवित्र, ताकि देख कहते हैं दो चीज पवित्र। ये शंख जो हड्डी है उसमें कोई अगर इंटरप्रिटेशन करे जो भाई हड्डी तो अपवित्र है और महिला जो है वो भी अपवित्र है, ये वेद कैसे कहते हैं जो ए, जो गाय का जो गोबर है वो पवित्र है और शंख का जो हड्डी है वो भी पवित्र है, कैसे माना जाए? बाकी मानते हैं हम लोग, क्योंकि वेद का वचन है, सारा हिंदू कम्युनिटी उसको मानते हैं। गोबर तो कोई भगवान का अंग लेपन कर दिया जाता है गोबर से, गोमूत्र से, गोमय से, और शंख जो हड्डी है अच्छी तरह से भगवान का आरती के पश्चात उसको बजाया जाता है। तो वो तो हमारा विचार से यदि लॉजिक हम लोग ले आते हैं कि भाई विष्ठा हड्डी ये पवित्र कैसा हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो वो लॉजिक नहीं चले, वास्तविक हम लोग क्रियात्मक जीवन में जैसा वेद बताते हैं ये पवित्र है उसको मान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहना का मतलब है कि इसी प्रकार वेद वचन मान लेते हैं, उसमें आर्गुमेंट उसमें कमेंट नहीं लगना चाहिए। तप प्रमाण वेद सत्य जे कर लोखणा कर सत प्रामाण्य है। साधारणतः तो हम लोग वेद का प्रमाण से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं, जो कुछ हम लोग का नॉलेज है जैसे जैसे वेद में कहते हैं उसी को मान लेते हैं। इसीलिए जो उनका मुख्य अर्थ है उसको ही ग्रहण करना चाहिए, उसका इधर उधर कोई टिप्पणी लगा करके उसको समझना ये उचित नहीं है। जो विशाद करके इसका अर्थ निकालो, कोई अगर कहे जो हम लोग जानते हैं कि ये जो विष्ठा है मैला है ये जो हड्डी है ये अपवित्र है, क्यों इधर देश में कह दिया कि गाय का जो गोबर है और शंख का जो हड्डी है ये पवित्र है, अब इसमें विश्वास लगा कि क्या है सरकार? कोई विश्वास लगाने का जरूरत नहीं है। इसलिए सतत प्रमाण, वेद वचन का सतत प्रमाण हम लोग का पंडित समाज में यही है कि कोई अगर कोई चीज स्थापित करने को चाहते हैं वेद प्रामाणिक वचन उसमें देने से अपर जो है वो कहते हैं जो है ठीक है, वेद का प्रमाण मिला है ठीक है। लेकिन लॉ कोर्ट में आप जाइए तो आप कानून का किताब से अब अगर उसमें कोटेशन दे दीजिएगा, देखिए इस कोटेशन इस जगह में ऐसे कहते हैं तो जो जज है मान लेते हैं ठीक है। किसी प्रकार वेद का कोई परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है, जैसे का तैसे आप लोग अगर ले लीजिए और जैसे का तैसे आप समझ लीजिए, जैसे वेद कहते हैं कोई गौणार्थ नहीं करके केवल मुख्यार्थ करके, तभी आपको वेद पढ़ना ठीक रहेगा। और नहीं तो आप लोग बिरादी खास तो खाली वेद का बात नहीं है, जैसे भगवत गीता है तो इसी प्रकार जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मत परतरंग किंचित मत परतरंग क्या मतंग परतरंग नानक किंचित अस्थि धनंजय, तो फिर क्यों हम लोग नहीं मान? जो भगवान कृष्ण को भगवान सब कुछ मानते हैं, सब आचार्य लोग मानते हैं, और भगवान कहते हैं कि हमसे बड़ा और कोई है, और अर्जुन भी कहते हैं पर ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भगवान, अर्जुन भी मान लेते हैं। तो क्या जरूरत है जो कृष्ण का अर्थ और कुछ लगाया जाए, और कृष्ण जो कहते हैं उसका अर्थ और कुछ लगाया जाए? ये हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का आदि संप्रदाय है ये उसको नहीं मानते हैं। जैसा वेदादि शास्त्र में जैसे जैसे लिखा है, इसलिए हम लोग भगवत गीता आज भी प्रचार कर रहे हैं। आप शायद हमारा किताब देते होंगे तो हम लोग ऐसा अर्थ नहीं लगाते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ ये होता है, पांडव का अर्थ ये होता है और कुछ होता है इधर अंश इधर उधर नहीं। जैसे भगवत भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं सारा दुनिया में, यही प्रचार कर रहे हैं कि कृष्ण सु भगवान सा, भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण जो है आप लोग भगवान को ढूंढते हैं। कोई कहते भगवान मर गया, भगवान कोई कोई कहते हैं भगवान को कहाँ ढूंढते हैं, रास्ता में इतना दरिद्र लेते हैं, यही तो सब भगवान है। तो इस प्रकार अर्थ हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं कृष्ण सु भगवान सा, जैसा आचार्य लोग कहते हैं, सब बड़े बड़े आचार्य जिसके द्वारा हमारा ये भारतीय संभव का शासित है, बड़े बड़े रामानुचार्य मध्वाचार्य माधव विष्णु स्वामी शंकराचार्य सब जितने हम लोग हिंदू कहते हैं, कोई कोई अपना एक चार पांच आचार्य के भीतर हम लोग मानने वाला है, तो सब आचार्य बड़े बड़े आचार्य जैसा शंकराचार्य, शंकराचार्य निर्विशेषवादी होते ये भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो स्वयं भगवान सब भगवान स्वयं कृष्ण और देवकी नंद, और वैष्णव आचार्य जैसा निम्बाच है और क्या नाम रामानुचार्य है, मध्वाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, सब कोई मानते हैं कि कृष्ण सु भगवान स्वयं अर्थात के निर्देश है कृष्ण भगवान मूल भगवान। ऐसे भगवान का तो अनेक अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप अनेक रूप है वो, बाकी मूल पुरुष जो है जो हम आदि ही दीवाना भगवान कहते हैं, मैं सब देवता का आदि है और अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम बुधा भाव संबंधिता, कि भगवान खुद भी कहते हैं और बड़े बड़े भक्त जो हो गए हैं वो भगवान को मानते हैं, तो क्यों हम लोग कृष्ण को संपूर्ण भगवान नहीं क्यों मानते, ये कहने का मतलब। इसीलिए हमारा धर्म का पतन हो गया, जो भगवान तो मौजूद है, भगवान सामने खड़ा हो करके आपको उपदेश दे रहा है और उपदेश आज तक मौजूद है, अश्विन बड़े बड़े भक्त लोग भी मौजूद है, फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि भगवान को दिखा सकते हैं, भगवान है कि नहीं और हम भगवान को मानते नहीं, ऐसे ऐसे भगवान मर गया, क्यों ऐसा बात चल रहा है, तो इसी को हम लोग चाहते हैं बंद करने के लिए। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है जो भगवान है, क्यों भगवान नहीं, भगवान है और सामने आपका प्रस्तुत भी है, उनको निर्देश भी है, उनका जो उपदेश है वो भी मौजूद है और सब मानने वाले सब बड़े बड़े आचार्य जो है, आप क्यों नहीं मानते, ये हमारा प्रचार जो विचार है, आप लोग विचार कीजिए, विचार करके कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में आप लोग सब सहयोग कीजिए, ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है और आप लोग अगर सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेगा, इससे इसका फल होगा जो भारतवर्ष अभी सारा दुनिया में दरिद्र रूप से परिचित है, यदि आप एक कृष्ण कॉन्शियस है, ये जो आपका देश में ये जो संपत्ति है कृष्णा, इसको यदि आप सारा दुनिया में देंगे, दुनिया का ऊपर उपकार होगा, आपका उपकार होगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, ये हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण क्या नाम दिया कृष्ण भावना अमृता संघ का उद्देश्य है। तो आप लोग के सामने हम लोग सब आए हैं, आप लोग सोचिए पूछताछ कीजिए अच्छी तरह से समझिए और कुछ अच्छी तरह से हम लोग का साथ, नहीं तो फिर सारा दुनिया सारा भारतवर्ष वही होगा, नक्सलाइट हो जाएगा। जब तक असल बात उनको नहीं सुनाएंगे तो वो तो माओ का बात इसका बात मार्क्स का बात यही तो सुने, कोई तो आइडल बैंक जेवीन स्वास्थ्य था, तो इसलिए को मारूंगा आश्रित प्राग भगवान फल्लाद मार्ग को मारूंगा आश्रित प्राग धर्मान भागवतान कौमार अवस्था से, जैसे आप लोग कुमार जिसको शादी नहीं हुआ है 15-16 20 उसको कौमार का कुमार कहते हैं, तो कुमार कुमार अवस्था से यानी स्कूल से सीखना चाहिए। कौमारो आचरित्रार्थ धर्मान भागवता में भागवत धर्म, भागवत धर्म एक भगवान क्या चीज है और हम क्या चीज है और दुनिया क्या चीज है, भगवान से दुनिया से हमसे क्या संपर्क है, भगवत भजन करने से हमारा क्या लाभ होगा, ये सब चीज समझना जो है इसका नाम है भागवत धर्म। ये तो स्कूल कॉलेज में समझाना पढ़ाना चाहिए। बाकी क्या कहें, अंधा जान लोपनीय माना हमारे सब लीडर लोग भगवान को उड़ा देनी चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर लीडर लोग उड़ा देनी चाहते हैं तो जो कुछ है आप लोग जो है नौजवान है इसको अच्छी तरह से समझिए। और इधर हम लोग का डॉक्टर राव साहब मौजूद है, खूब अच्छी तरह से समझिए और खूब प्रचार कीजिए यदि आप दुनिया में सुख देने को चाहते, क्योंकि भगवान संपर्क नहीं होने भगवत भक्त ही जाति तपस्या अप्राण से ही देह समन्न लोग भगवत भक्ति हीन होता से आदि जातिवादी हो गए कि आप नेशन का उन्नति करने को चाहते हैं, कुछ उन्नति नहीं होगी, क्योंकि आप तो समझ लेते हम इंडिपेंडेंट हो गया और न जाने हमको क्या मिल गया, बाकी हम सारा दुनिया घूम घाम का है, भारतवर्ष का कोई इज्जत नहीं है, वो कहते भिखारी का देश है, गरीब का देश है, आपका एक पैसा भी वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसका कुछ कीमत है नहीं। आप इधर से नोट ले जाइएगा तो उधर एक पैसा भी नहीं देगा कोई लेगा नहीं, और अमेरिकन का डॉलर इधर ले आइएगा उसका बैंक वैल्यू है 7.5 और 15 रुपये में बेच दीजिए, क्योंकि उसका देश का इज्जत है, आपका देश का कोई इज्जत नहीं है। आप लोग झूठ मूठ घमंड है जो हम लोग बड़ा स्वाधीन हो गया, बड़ा हम कुछ प्राप्त कर लिए, यदि आप इज्जत बढ़ाने को चाहते हैं ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ज्वाइन कीजिए, इसको बढ़ाइए आप इज्जत में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, यस बिल्कुल कृष्ण, ठीक है।